दिन भर 4 जुलाई दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर इसराइल पहुंचे।
योर हीरोज आर एन इंस्पिरेशन फॉर द यंगर जनरेशन। फ्रेंड्स, इंडिया इज अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन बट अ यंग नेशन।
बताएंगे सिक्किम सीमा पर चीनी सेना का जमावड़ा क्यों है भारत के लिए चिंता का विषय। पाकिस्तान में थरपारकर इलाके में महिलाएं चला रही हैं डंपर।
एक है हमारे पास ग्रुप जो कि ज्यादा ओल्डर खवातीन है, उनको बहुत होता है कि ठीक है हमने अपनी जिंदगी में इतना नहीं किया लेकिन हमारी जो बहू है और बेटी है उनको मौका मिलना चाहिए।
जिक्र होगा विंबलडन का भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर इसराइल पहुंच गए हैं। मोदी इसराइल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसराइल पहुंचने पर मोदी ने कहा कि उनका दौरा दोनों देशों के मजबूत रिश्ते का प्रतीक है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने आपका स्वागत है मेरे दोस्त कहते हुए नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। मोदी के दौरे के दौरान नेतन्याहू लगभग सभी कार्यक्रमों में उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कृषि, अंतरिक्ष तकनीक और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में समझौते हो सकते हैं। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया का दावा अगर सही है तो अमरीका का अलास्का इस मिसाइल की पहुँच में हो सकता है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के जरिए चीन से कहा है कि वो इस बेतुकी हरकत पर हमेशा के लिए रोक लगाए। वहीं चीन ने सभी पक्षों से शांत रहने को कहा है। उधर दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि अगर उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए मिसाइलों का परीक्षण करता रहा तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। रूस ने परीक्षण पर चिंता जाहिर की है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल की पहली छमाही में भूमध्य सागर पार कर यूरोप पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा है। आंकड़ों से जाहिर हुआ है कि प्रवासियों के लिए इटली का रास्ता सबसे पसंदीदा है। 85,000 प्रवासी इटली पहुंचे हैं। ब्रिटेन में इटली के राजदूत पास्कुआले टेराचानो ने बीबीसी से कहा कि इस मामले में यूरोपीय संघ से बेहतर साझेदारी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा,
With Turkey, a solution was found, and that flux was stopped.
तुर्की के साथ एक समाधान हासिल किया गया जिससे ग्रीस की ओर लोगों का जाना रुका या फिर कम हुआ। अगर हम यूरोप के बीच समन्वय बिठा सकें तो चीज़ें आसान हो सकती हैं, इससे बोझ का बंटवारा होगा। ये थे पास्कुआले टेराचानो के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इटली ने ऑस्ट्रिया के राजदूत को तलब किया है। उन्हें समन ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री के ये चेतावनी देने के बाद भेजा गया है कि ऑस्ट्रिया प्रवासियों के इटली से उनके देश जाने वाले रास्ते को बंद कर देगा। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री सेबेस्टियन क्रूज ने कहा कि अगर प्रवासियों का आना जारी रहा तो उनके देश को अपनी सीमाएं सुरक्षित करनी होगी। ऑस्ट्रिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 4 सशस्त्र वाहनों को सीमा के करीब भेजा गया है। इटली ने इस मामले में यूरोपीय कमीशन से हस्तक्षेप की मांग की है। फिलीपींस के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटार्टे ने दक्षिणी क्षेत्र मिंडिनाओ में मार्शल लॉ संवैधानिक तरीके से लागू किया। राष्ट्रपति के आदेश को विपक्ष के नेताओं ने कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि इस्लामी चरमपंथियों पर काबू पाने के लिए राष्ट्रपति का फैसला ज़रूरी था। विपक्ष के एक नेता रेनाटो रेयस जूनियर ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से गलत फैसला लेने के लिए हालात का फायदा लेने वालों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा,
We can say that the Supreme Court would be complicit in the abuses that have been committed.
हम कह सकते हैं कि मार्शल लॉ के तहत होने वाली ज्यादतियों में सुप्रीम कोर्ट की भी सहभागिता होगी। हम जानते हैं कि ज्यादतियां अब भी हो रही हैं और आगे भी होंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो ऐसा करेंगे। ये थे रेनाटो रेयस के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश के अग्निशमक अधिकारियों के मुताबिक राजधानी ढाका के करीब एक कपड़ों की फैक्ट्री में हुए धमाके की चपेट में आकर 10 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 50 लोग घायल भी हुए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की इसराइल यात्रा पर तेल अवीव पहुंच गए हैं। आज़ादी हासिल करने के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इसराइल के दौरे पर गया है। इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत तो करेंगे ही, वहां रह रहे भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। आइए सीधे चलते हैं तेल अवीव वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र के पास। हरेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि नरेंद्र मोदी का किस तरह से स्वागत किया गया तेल अवीव में?
नरेंद्र मोदी का कहा जाए तो अनोखे तरह से यहाँ पर स्वागत किया गया। यहाँ पर विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ने ये कहा भी कि ये एक अलग तरह का एक भव्य स्वागत होगा, एक अनोखा स्वागत होगा, ऐसा स्वागत जो कि और किसी नेता को यहाँ नहीं मिला। दरअसल देखा जाए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद थी, और अभी भी मैं यहाँ पे वहीं पे हूँ जहाँ पर उनका स्वागत किया गया, एयरपोर्ट पे हूँ, और पूरी कैबिनेट को कहा गया था, जितने भी मंत्री हैं सभी को ये आदेश थे प्रधानमंत्री के कि वो वहाँ पर उनके स्वागत में मौजूद रहें। मंत्रियों के अलावा वहाँ पर यहाँ के जितने धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक जो नेता हैं, उन्हें भी इसके लिए बुलाया गया था और वो भी उनके स्वागत में यहाँ पर मौजूद थे। दोनों नेता जिस तरह से मिले, गले मिले, और जिस तरह से दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि दोनों जो नेता हैं, जो कि अपने एक दूसरे को अपने मित्र के तौर पर वो बता रहे थे कि वो हम और उन्होंने अपनी मित्रता का वास्ता भी दिया, कहा कि ये जो संबंध है इसमें जो 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 गहराई आ रही है या जो मजबूती आई है उसमें उन दोनों दोनों की जो मित्रता है उसका भी बड़ा अहम किरदार रहा है, इस बात को भी वो बताने से नहीं चुके।
ये बताइए क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसके बाद वो क्या क्या करने जा रहे हैं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ के कृषि मंत्री उरी आरियल के साथ अभी अभी एक एग्रीकल्चरल फार्म गए हैं, जहाँ पर की बड़े ही अनोखे तरीके से जो है हॉर्टिकल्चर का वो फार्म है वो उन्हें दिखाया जाएगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री आज याद वशेम जो कि होलोकॉस्ट मेमोरियल है वो वहाँ भी जाएंगे, और रात में आज रात उनका प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निवास पर, उनके सरकारी निवास पर आज उनका डिनर है। कल जो है वो बहुत ही कार्यक्रम जो है वो फिर कुछ इसी तरह का चलेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग हर गतिविधि में शामिल होना चाहेंगे, और अगले 3 दिनों के इस दौरे के दौरान वो लगभग जितनी भी गतिविधियां हैं सभी में दोनों प्रधानमंत्री साथ दिखेंगे। यहाँ तक कि जो नरेंद्र मोदी जब भारतीय समुदाय को यहाँ पर संबोधित करेंगे वहाँ भी बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद होंगे, और जब वो भारतीय सैनिकों के मेमोरियल पर भी जब जाएंगे वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उसमें भी न सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू शामिल होंगे बल्कि वो खुद भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो लगभग पूरे कार्यक्रम के दौरान दोनों ही प्रधानमंत्री साथ देखे जाएंगे, जो कि अभी तक कभी नहीं देखा गया है, और इस बात पर काफी यहाँ जोर दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि दोनों के दरमियान, दोनों ही नेताओं के बीच जो एक केमिस्ट्री है, जो पर्सनल केमिस्ट्री है, वो इन संबंधों को काफी आगे ले जाएगी।
बहुत जबरदस्त पर्सनल केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र मिश्र आपका तेल अवीव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर इसराइल पहुंचे हैं, जैसा कि अभी आपने सुना। कहा जा रहा है कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्ते कई गुना मजबूत होने वाले हैं। इन दिनों भारत में यहूदीवाद की प्रशंसा की जा रही है और उसकी तुलना हिंदुत्व से की जा रही है। हिंदुत्ववादी लोगों के अनुसार हिंदुत्व और ज़ायोनिज्म यानी यहूदीवाद में ज़्यादा फर्क नहीं है। सुनिए ज़ुबैर अहमद की रिपोर्ट।
भारत में हिंदुत्ववादी यहूदीवाद से खुद को करीब महसूस करते हैं। हिंदुत्व और यहूदीवाद के बीच समानताएं खोजी जा रही हैं। जयदीप प्रभु एक ऑनलाइन मैगजीन स्वराज के कंसल्टिंग एडिटर हैं। वो कहते हैं हिंदू और यहूदी धर्म में 3 मूल समानताएं हैं। दोनों विचारधाराएं बेघर रही थीं, दोनों का दुश्मन एक है और वह है इस्लाम, और दोनों ने सियासी लक्ष्य हासिल करने के लिए सांस्कृतिक रास्ते का सहारा लिया। जयदीप प्रभु आगे कहते हैं,
मेरा कहना यह है कि कंट्रोलिंग द लैंड मतलब क्या होता है, इस पे आपको
एक सॉवरेंटी होनी चाहिए, सॉवरेंटी इन द सेंस कि आपके जो उसूल है, आपके प्रिंसिपल जो है वो आपको लीगली एनफोर्स करने की ताकत होनी चाहिए। अभी आप इंडिया में देखिए कि मुगल सल्तनत आ गए और उससे पहले दूसरे थे, इन लोगों का सल्तनत थी इस टाइम पे, इन लोगों ने ये शास्त्री लोगों की इतनी क्या कहते हैं स्कॉलरशिप फंडिंग नहीं हुई है, ऐसा नहीं कि जीरो हुई है, बट एट द सेम टाइम कंपेयर टू हिंदू किंगडम जो थे बहुत बहुत कम हुई है। तो होता क्या है कि एक स्टैग्नेशन होता है हिंदू सोसाइटी में, क्योंकि ऐसे चीजों पे ये नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होती है, थियोलॉजिकली डेवलपमेंट नहीं होता है।
हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1923 में हुआ था, लेकिन जयदीप प्रभु के अनुसार ये विचारधारा भारत में पहले से मौजूद थी। यहूदीवाद का आंदोलन यूरोप में 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जिसका मकसद यूरोप और दूसरी जगहों में रहने वाले यहूदियों को इसराइल वापस भेजना था। यहूदियों को यूरोप के अलग अलग देशों में रहना पड़ रहा था, जहां उनके लिए यहूदियत को महफूज रखना मुश्किल हो रहा था। बाद में यानी 1948 में यहूदियों के लिए अलग देश इसराइल की स्थापना कर दी गई। जयदीप प्रभु के अनुसार हिंदुत्व ने अपना सियासी मकसद अब तक पूरा नहीं किया है, यानी भारत को एक हिंदू राष्ट्र अब तक नहीं बनाया है।
अभी अब हिंदू महासभा का आर्गुमेंट देखिए, आरएसएस का आर्गुमेंट देखिए, अभी कि एक हिंदू राष्ट्र जो कहते हैं ये नहीं कर पाए ये लोग।
हैदराबाद में हिंदुत्व पर काम करने वाले प्रसिद्ध विशेषज्ञ ज्योतिर्मय शर्मा ने इस विचारधारा पर किताबें भी लिखी हैं। वो कहते हैं कि हिंदुत्व और यहूदीवाद में समानताएं तो हैं, लेकिन वो नकारात्मक हैं। उन्होंने दो समानताओं का जिक्र किया, बहुमत का वर्चस्व और दूसरा असुरक्षा का एहसास।
एक इनसिक्योरिटी है और एक जो है वो मेजोरिटेरियनिज्म है, हिंदुत्ववादियों का जो इनसिक्योरिटी है। अगर आप सतह से थोड़ा नीचे जाए तो इनसिक्योरिटी जो है वो इसलिए है कि ये नहीं है कि वो इनसिक्योर है कि दे आर सराउंडेड बाय एनिमीज, एज इजराइल कैन स्टिल लेजिटिमेटली क्लेम। अगर वो पैलेस्टीनियंस को ढंग से इंसानियत से बर्ताव करें और जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है उसका कोई समाधान कर दें तो शायद वो इनसिक्योरिटी कम हो जाएगी।
ज्योतिर्मय शर्मा के अनुसार हिंदुत्ववादी विचारधारा और यहूदीवाद के बीच समानता खोजना बेकार है, ये केवल सतही तुलना है। दोनों विचारधाराओं के बीच साझे इतिहास और साझे अनुभव की मिसाल नहीं मिलती। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
भारत और चीन के बीच सिक्किम क्षेत्र को लेकर बना तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सिक्किम में डोकलाम इलाके में लगातार तीसरे सप्ताह गतिरोध बना हुआ है। चीन का सरकारी मीडिया और थिंक टैंक यहां तक कह चुके हैं कि अगर दोनों देशों के बीच पैदा हुए विवाद को सही तरीके से संभाला नहीं गया तो युद्ध भी हो सकता है। मैंने चीनी मामलों के जानकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से संपर्क किया और पूछा कि क्या 1962 के बाद से ये भारत चीन संबंधों का सबसे खराब दौर है।
शायद ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले 1967 में और उसके बाद 1984-85 की विंटर के दौरान और हाल ही में अप्रैल 2014 में ऐसे डायरेक्ट आपस में स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और चीन का, और उसके कंपैरिजन में जो अब हो रहा है वो सीधा भारत चीन के बीच में स्टैंड ऑफ नहीं है, वो स्टैंड ऑफ है भूटान और चीन के बीच में। और चूंकि भारत के एक तरह से ऐतिहासिक तरह से स्पेशल रिलेशन है भूटान के साथ, इसलिए भारत उसमें पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है। और उसके साथ साथ वो लोकेशन इस तरह की है कि यदि वहां तक चीन 40 टन का रोड बना लेता है तो वो भारत की सिलीगुड़ी एरिया में, जहाँ जिसको हम चिकन्स नेक कहते हैं, उसके बहुत करीब उसका पावर प्रोजेक्शन का एक तरह से पोटेंशियल बनता है, वो हमारी चिंता का विषय भारत में है। पर वो इनडायरेक्ट मुद्दा है, डायरेक्ट मुद्दा ये है कि भूटान की संप्रभुता सॉवरेनिटी के ऊपर एक तरह से चीन का हस्तक्षेप है और उस मसले में भारत अपने आप को जुड़ा पाता है।
ये जो इतिहास के पाठ पढ़ाने की बात की जा रही है, भारत कह रहा है कि 1962 अब नहीं है, उधर चीन भी कह रहा है कि 1962
और तरफ।
दोनों तरफ से, इसको किस तरह से देखते हैं आप?
मुझे लगता नहीं कि आज के युग में 1962 की तरह की लड़ाई लड़ना अकलमंदी होगी भारत के लिए या चीन के लिए, और ऐसा कुछ होने वाला है ऐसा मुझे लगता नहीं। आज के जमाने में और कई जरिए हैं जिसको ब्रोबीट करना कहते हैं एक दूसरे को, तो मुझे लगता नहीं कि 1962 वाली लड़ाई दोबारा से वापिस आएगी। इसमें केवल पावर प्रोजेक्शन की बात शायद है, और क्योंकि ये प्लेटो है, जाहिर है कि देशों में जब नाराजगी होती है तो इस तरह की भूमि पर प्लेटो की अहमियत ज्यादा होती है, वो चाहे पावर प्रोजेक्शन के लिए हो या फिर सर्वेलेंस के पर्पज से हो, या मान लीजिए युद्ध होता है तो भी वो हाई ग्राउंड एडवांटेज होता है।
एक शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस के फेलो हैं हुजू योंग, उनका एक वक्तव्य आया है, वो कहते हैं कि अगर भारत नहीं मानता तो चीन को सैनिक विकल्प तलाशना होगा। इसमें कुछ दम आपको दिखाई देता है या सिर्फ ये रेटोरिक है?
कहने के लिए ये कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। इसके अलावा आप देखें कि सेना के जो हमारे लीडर्स हैं वो अक्सर इस तरह की बात कहते हैं, दोनों तरफ से कहते हैं, तो ये कह देने भर से काफी नहीं हो जाता। चीन अपने लिए भी यदि इस तरह का विकल्प सोचता है तो बहुत खतरनाक होगा उसके अपने लिए, क्योंकि देखें कि ज्यादातर उसके पड़ोसी देशों को मुश्किल है चीन के साथ, और साथ में सारी बड़ी शक्तियों को भी कुछ ना कुछ परेशानी है राइजिंग चीन के साथ। तो इस तरह की बेवकूफी करने से तो एक तरह से पूरे विश्व को जो है वो चीन के विरुद्ध खड़े करने वाली बात होगी। तो मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई कार्यवाही चीन करेगा। मैंने जैसे कहा और कई तरीके हैं।
आपकी नजर में क्या सबसे मैच्योर तरीका क्या है इस स्टैंड ऑफ को दूर करने का?
जाहिर है कि बातचीत ही सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर ना तो हम नेशन स्टेट थे, चीन हो या भारत हो या भूटान हो, अभी हाल ही में करीब 70 वर्षों से हम लोग यूरोपियन ढांचे को हमने अपनाया, नेशन स्टेट बनने की बात की, संप्रभुता की बात की और बॉर्डर्स को डिमार्केट करने की बात की है। इसलिए ये कह देना कि ये टेरिटरी इनडिस्प्यूटेड और मेरी है, ये तीनों देश कह सकते हैं ऐसी बात। मुझे लगता है इस वक्त क्योंकि मामला खासकर भूटान में और चीन में है तो सबसे अहमियत रखती है उनकी 1998 की एक संधि, जिसमें साफ लिखा गया है कि दोनों देश कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे स्टेटस को जो 1959 से पहले था उसमें कोई बदलाव लाया जाए। तो इस तरह का बड़ा सड़क आगे तक लाना चीन का एक तरह से उस ट्रीटी को वायलेट करता है, क्योंकि संप्रभुता के नजरिए से 2011 में एक स्पीच है भुटनीस किंग की नेशनल असेंबली में, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि ये जो खबरें हैं कि चीन हमें सेंट्रल एरिया नॉर्थ में देकर ये हमारा वेस्ट का एरिया ले लेगा, 500 किलोमीटर से 259 किलोमीटर ले लेगा, ये गलत है, हमारा अधिकार इस पूरे रीजन पर आज भी है, मोटे तौर पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो जो चुंबी वैली है चीन उसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहता है, इसलिए चाहता है कि ये वेस्टर्न भूटान का एरिया जो भूटान क्लेम करता है उसको वो हड़प ले, किसी तरह से ले ले। तो फंडामेंटली सबकी अपनी अपनी वर्शंस हैं हिस्ट्री की और कहां उनका भूमि कहां तक जाती है, कहां पर सीमा है। तो जाहिर है कि इसमें बातचीत से हल होगा, और बढ़िया बात यह है कि हम तीनों देशों में आपस में बहुत सी ऐसी एग्रीमेंट्स, भारत और चीन की 1996 की एग्रीमेंट एक ऐसी है जो साफ कहती है कि कोई मिलिट्री मूवमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें शांति भंग हो सीमा के क्षेत्र में, ऐसा साफ लिखा है उसमें।
ये थे जेएनयू के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसने लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इससे पहले अमरीका ने कहा था कि उत्तर कोरिया ने जापान की तरफ एक मिसाइल दागी है। ये पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने का दावा किया है। इसकी पहुँच अमरीकी जमीन तक हो सकती है। विवरण दे रहे हैं फैसल मोहम्मद अली।
उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कोरिया के सरकारी टेलीविजन चैनल का कहना है कि टेस्ट मिसाइल जापान सागर में गिरा और उसकी पहुंच अमेरिका तक हो सकती है। जापान के कैबिनेट सेक्रेटरी योशिदा सुगा ने कहा, फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि एक मिसाइल का टेस्ट किया गया था। हमें लगता है कि ये 2500 किलोमीटर तक पार कर सकता है। इसने 40 मिनट में 900 किलोमीटर की उड़ान भरी और ओगा प्रायद्वीप से 300 किलोमीटर पहले जा गिरा। ये थे जापान के कैबिनेट सेक्रेटरी के शब्द। टोक्यो के कुछ शहरियों का कहना था कि वो नहीं जानते कि उन्हें क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कई बार इंटरनेट पर ऐसी चीजें लिखी होती हैं कि हमें किन बातों को लेकर सावधान रहना चाहिए। यह जानना बहुत डरावना है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जब इस तरह का खतरा हम पर लगातार मंडरा रहा है। एक दूसरे शहरी का कहना था, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें मिसाइल परीक्षण से कुछ सकारात्मक हासिल होता है, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि वो ये क्यों करते रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर ऐसा किया है और मुझे लगता है इस पर सवाल उठाए जाने चाहिए। टोक्यो के दो शहरियों के शब्द। हालांकि अमेरिका और रूस ने दावा किया था कि टेस्ट किया गया मिसाइल मध्यम दूरी तक ही मार कर सकता है और इससे उन्हें कोई खतरा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर रोक लगा रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से इस तरह की हरकतों पर रोक लगवाने को कहा है। चीन ने सभी पक्षों से धैर्य रखने की बात कही है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग का कहना था, अभी हालात तनावपूर्ण है, मुझे उम्मीद है कि सभी पक्ष संयम बरतेंगे और हालात को सामान्य होने देंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। उत्तर कोरिया की राजधानी सोल में बीबीसी के स्टीफन इवाइंस ने कहा कि इस साल के मिसाइल परीक्षण में ये 11वीं मिसाइल है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, इससे पहले उत्तर कोरिया ने मई महीने में मिसाइल परीक्षण किया था।
उत्तर कोरिया का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में साइकिल चलाने के लिए बने साइकिल ट्रैकों को तोड़ने संबंधी सरकार के फैसले पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सरकार ने मुख्य सड़कों के किनारे बने इन साइकिल ट्रैकों को यह कहकर तोड़ने का फैसला लिया है कि इससे लोगों को परेशानी होती है और इन्हें अवैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार विकास कार्यों में भी विद्वेष की भावना से काम कर रही है। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने मुख्य शहरों के प्रमुख मार्गों पर साइकिल सवार लोगों की सहूलियत के लिए बड़ी संख्या में साइकिल ट्रैक बनवाए थे। सरकार ने इसे अपनी उपलब्धि बताकर खूब प्रचारित भी किया था और खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साइकिल चलाकर इनका उद्घाटन किया था। लेकिन अब बीजेपी सरकार इन साइकिल ट्रैक्स पर हथौड़ा चलाने जा रही है। सरकार के इस फैसले की समाजवादी पार्टी ने कड़ी भर्त्सना की है। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं,
भाजपा सरकार तो राग द्वेष की शिकार है और जो भी विकास का काम किया है समाजवादी सरकार ने उस सब का विनाश करना चाहते हैं। साइकिल तो आम जनता की सवारी है और बच्चे भी चलाते हैं, सुरक्षित उन्होंने रास्ता दिया साइकिल ट्रैक बना करके। तो ये मानसिकता है भाजपा सरकार की, उनकी चिड़ इस बात से है कि समाजवादी सरकार ने विकास ही क्यों किया, क्योंकि भाजपा सरकार तो विकास के खिलाफ है।
हालांकि सरकार का कहना है कि ट्रैक्स को तोड़ने के पीछे वजह ये है कि ये गलत जगहों पर और गलत तरीकों से बनाए गए हैं। राज्य के नगर विकास मंत्री ने इसके पीछे ये भी वजह बताई थी कि यहां सड़कें पहले से ही कम चौड़ी हैं, ट्रैक बन जाने से ये और सक्रिय हो गई हैं। वजह और भी हैं, लेकिन नई सरकार को शायद सबसे ज्यादा आपत्ति इनके किनारे लाल और हरे रंग के पत्थरों से है। दूसरे बीजेपी को भी ये लगता है कि शायद इससे समाजवादी पार्टी का प्रचार होता है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी,
समाजवादी पार्टी ने साइकिल ट्रैक को केवल और केवल अपने चुनाव चिन्ह के उपयोग के उद्देश्य से बनाया था, जबकि जनता को इससे समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। साइकिल ट्रैक पर वास्तविकता में जिन्होंने जिस जगहों पर साइकिल ट्रैक बनाया है वहाँ पर साइकिल चलाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। साइकिल चलाने वालों के लिए जहाँ वास्तविकता में जरूरत है वहाँ पगडंडी भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये साइकिल ट्रैक केवल पॉलिटिकल मोटिव के लिए बनाए गए और इनसे जनता को समस्या हो रही थी, इसलिए हमने साइकिल ट्रैकों को तोड़ने का निर्णय लिया है। विपक्ष में रहते हुए भी हमने इस मुद्दे को लगातार उठाया।
राजेंद्र चौधरी बीजेपी के इस आरोप पर चुटकी लेते हैं,
तो जो साइकिल है देश में उन्हें तो प्रतिबंध लगना चाहिए। साइकिल बंद करा तो पूरे देश की साइकिल तो चलेगी, आम जनता साइकिल है उसके पास, साइकिल चलेगी तो समाजवादी पार्टी का प्रचार होगा। अगर इनकी यही समझ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या दिशा है इनकी सरकार की और इनकी पार्टी की।
सपा सरकार ने लखनऊ, नोएडा, बरेली, इलाहाबाद जैसे कई बड़े शहरों में साइकिल से चलने वालों की सुरक्षा और साइकिल की सवारी को बढ़ावा देने के मकसद से साइकिल ट्रैक्स का निर्माण कराया था। सरकार का मानना था कि इससे पर्यावरण को भी शुद्ध रखने में मदद मिलेगी। ट्रैक्स के निर्माण में काफी पैसा भी खर्च हुआ था। हालांकि कई जगहों पर लोगों ने इसका दुरुपयोग करते हुए इन पर कब्जा भी कर लिया है। बावजूद इसके जानकारों का कहना है कि साइकिल चलाने वालों के लिए महानगरों में एक अलग रास्ता राहत भरा जरूर था। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सिंध प्रांत के रेगिस्तानी इलाके थरपारकर में कोयले के खदानों में डंपर ड्राइवर के तौर पर काम करने के लिए 30 महिलाओं को चुना गया है। एक साल की ट्रेनिंग के बाद ये महिलाएं अब अपना काम शुरू करेंगी। सुनिए सबा नाज की ये खास रिपोर्ट।
सिंध की एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ने पहले बैच में 30 खवातीन को बतौर डंपर ड्राइवर्स मुंतखब किया है। हाल ही में जब माइनिंग कंपनी की जानिब से थर के इलाके इस्लामकोट में खवातीन डंपर ड्राइविंग प्रोग्राम का ऐलान हुआ तो थर और आसपास के कई इलाकों से जोक दर जोक खवातीन ने इंतहाई जोश खरोश के साथ इस काम के लिए अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के सरबराह शमसुद्दीन शेख ने बीबीसी को बताया कि थर की खवातीन मेहनतकश हैं और इलाके से गुर्बत दूर करने के लिए माशर्ती और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करने की सलाहियत रखती हैं। यही वजह है कि माइनिंग कंपनी में खवातीन की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया।
थर की औरत जो है बहुत ही रेजिलिएंट किस्म की है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है, चार चार घंटे काम बाहर जाती है, पानी लेकर आती है गर्मी में। तो हमने कहा कि जब हम थर के मर्द लोगों को हायर कर रहे हैं तो औरतों को भी हायर करना चाहिए। अगर ये औरत इतनी मेहनत कर सकती है तो हम इसको सबसे डिफिकल्ट काम यहाँ पर दें ताकि वो ये प्रूव करके बता सके थर की औरत के थर की औरत अपने मर्द से किसी तरह से भी कम नहीं, इनफैक्ट उनसे आगे है। तो दैट वॉज द थिंकिंग कि ये औरतें डंपर ड्राइवर बने और नॉट ओनली हमारे लिए इंस्पिरेशन बने बट सारे पाकिस्तान की औरतों के लिए इंस्पिरेशन बने।
जब कभी किसी पसमानदा इलाके से खवातीन अपने माली मसाइल के हल के लिए घर से बाहर कदम रखती हैं तो उन्हें बाज़ोकात अपने ही घर वालों की तरफ से मुखालिफत का सामना करना पड़ता है। मिट्टी में रहने वाली 25 साल रानी ने बीबीसी को बताया,
मैं मिट्टी में रहती हूँ, मैं बच्ची की पढ़ा रही हूँ, हम बहुत गरीब लोग थे इसलिए मैंने अप्लाई किया। फिर मैंने कहा डंपर में अप्लाई करूँ, मैं बीबीसी से शौक से चलाऊंगी। और जब भाइयों के पास आई तो उन्होंने बोला कि कोई और अच्छी सी जॉब करो, डंपर की चला रही थी। मैंने कहा ये भी तो एक काम है, अच्छा काम है, जब लोग नौकरियां कर सकती हैं तो ये भी सवाल चलाना। तो वो भी मजाक उड़ाते लेकिन हम उनका नहीं सुनते।
डंपर ड्राइवर बनने की ख्वाहिशमंद हेती कहती हैं,
मेरा नाम हेती है और मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि औरत मजबूत है, इसलिए मैंने इसमें अप्लाई किया और मैं डंपर चला। घर वाले खुश है, घर वालों को भी फायदा होगा।
माइनिंग कंपनी के सरबराह शमसुद्दीन का कहना है कि खवातीन की भर्ती से कबल कई हलकों की जानिब से इस सिलसिले में मुखालिफत भी सामने आई। कई सवालात उठे कि मर्दों की बड़ी तादाद बेरोजगार है, ऐसे में खवातीन को डंपर ड्राइविंग जैसे शोबे में मर्दों पर तरजीह देना क्यों अहम है।
ये मुखालफत भी आई कि क्या मर्द मर गए यहाँ के, तब आप औरतों को रख रहे हैं, औरतों को नहीं रखना चाहिए, औरतों के लिए काम नहीं है।
दूसरी जानिब इस काम के लिए दिलचस्पी रखने वाली खवातीन का जोशो खरोश देखने से ताल्लुक रखता था। खवातीन के डंपर ड्राइविंग प्रोग्राम की इंचार्ज जहां आरा ने बीबीसी को बताया,
जो यंग लड़कियां जो बहुत एनर्जेटिक हैं, एक है हमारे पास ग्रुप जो कि ज्यादा जरा ओल्डर खवातीन हैं, उनको बहुत होता है कि ठीक है हमने अपनी जिंदगी में इतना नहीं किया लेकिन हमारी जो बहू हैं और बेटी हैं उनको मौका मिलना चाहिए। हमारे पास रजिस्ट्रेशन चल रही थी एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स थरपारकर में, उन पॉइंट्स पे काफी खवातीन आई हैं जो कि अपने शौहरों को, बेटों को और अपने साथ बहू और बेटियों को भी लेके आई हैं। इनकी एज बहुत ज्यादा थी तो उन्होंने ये बहुत कहा कि नहीं, जो मेरे घर की लड़कियां हैं वो सारी ये काम जरूर करेंगी, पीछे उनका घर संभालना मेरा काम है लेकिन मेरे घर की लड़कियां आप लोगों के साथ काम करेंगी। एक हमारे पास वो रिस्पॉन्स आया था कम्युनिटीज का कि उनके मर्द भी उतने ही सपोर्टिव होते थे, वो भी अपनी खवातीन के ओपिनियन को काफी रिस्पेक्ट करते थे और खवातीन भी उतनी ही एक्टिव होती थी। एक हमारे पास ग्रुप होता था जो कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं होते थे, जो कि मना कर देते कि नहीं हमारे पास तो कभी थर में ऐसा हुआ नहीं है।
डंपर्स की ड्राइविंग के लिए मुंतखब होने वाली खवातीन को बाकायदा इस काम पर लगाने से पहले उन्हें एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। माइनिंग कंपनी के सरबराह ने इसकी तफसील बताई,
एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस साल की ट्रेनिंग के अंदर इनमें सबसे पहले इनको लैंग्वेज की स्किल दी जाएगी बिकॉज इनकी इंग्लिश की स्किल थोड़ी सी बेहतर हो जाए ताकि ये मैनुअल पढ़ सकें, और तकरीबन एक साल की ट्रेनिंग के बाद इनको डंपर्स पे लगा देंगे। चूंकि ये वो हैं जिनको बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं आती है, जिन्होंने कभी जिंदगी में स्टेयरिंग पे बैठी नहीं है, इनको एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा पाकिस्तान की सारी खवातीन के लिए। क्योंकि जब तक आप अपनी 50% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट गेनफुली एम्प्लॉय नहीं करेंगे तब तक मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती और हम अपना पार्ट प्ले करना चाहते हैं।
थर में कोयले के जखायर का शुमार दुनिया के 16 बड़े जखायर में होता है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के इश्तराक से 1991 में दरियाफ्त हुए थे। 9000 किलोमीटर पर मुहित ये रकबा कोयले के 175 बिलियन टन जखायर से मालामाल है। पाकिस्तान की मेहनतकश खवातीन किसी से कम नहीं, जरूरत इस बात की है कि उन्हें जिंदगी के हर शोबे में नुमाया किरदार अदा करने और अपना मकाम बनाने के मौके फराहम किए जाएं।
और उधर विंबलडन से खबर है कि एंजेला कर्बर अपना पहला मुकाबला जीत गई हैं, फाल्कुनी को हराया है उन्होंने 6-4, 6-4 से। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर इसराइल पहुंच गए हैं। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।